और ये स्टेज आपकी आएगी जब आप इल्म हासिल करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगे, एंड इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस। ये नहीं कहूँगी कि मैं 2 साल का कोर्स करके बस अब छुट्टी, 3 साल का कोर्स करके अब छुट्टी, 18 महीने का कोर्स करके अब छुट्टी, नहीं, इट्स अ कॉन्स्टेंट लाइफ टाइम स्ट्रगल। माँ बाप को ये करना होगा कि जो ईमान उनके अंदर आ गया है उसके ऊपर सोचें कि वो किस तरह से इस ईमान के ऊपर आए और इसका ईमान का उनको फ़ायदा क्या है। औलाद के लिए आपको क्या करना होगा कि औलाद के जो सवालों के जवाब हैं, अगर आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाती और आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, एंड इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, आप इतनी लॉजिकल बात भी करेंगी आपके बच्चे को आपकी बात क्लिक नहीं करेगी, कोई दूसरा बाहर बैठा हुआ 1-2-4 जुमले बोलेगा, कहेगा हाँ बात कितनी अच्छी की, दैट क्लिक्स। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी बात नहीं सुनते इट्स ओके, उनको क्लासेस में भेजिए, आप देखें, आप उनको समझाएं, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा। स्टार्ट लिसनिंग समबडी, और हर सवाल का जवाब वन लाइनर नहीं होता है, ये भी हकीकत है। बाज़ोकात बाज़ बच्चे टेक्स्ट करते हैं मुझे इसका जवाब दे दें, वन लाइनर, बस चीज़ों का जवाब वन लाइनर नहीं होता है, बस चीज़ों के लिए आपको एक पूरा माइंडसेट बिल्ड करना पड़ता है। इसीलिए कुरान ने यहाँ पर अक्ल से सोचने की बात की है, अक्ल से सोचें। वो जो सूरह मुल्क में लोग थे उन्होंने क्या अपना एक्सक्यूज़ दिया था कि हम क्यों कुरान से जो है वो सुनकर उसको हमने झुठला दिया, लौकुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलू, उन्होंने अपनी हसरत का इजहार किया था, अगर हम सुनते नाक़िलू अक्ल से काम लेते, फस्तमिउ लहू, कुरान में आता है गौर से सुनो, यही था जो जहन्नमियों का दलील थी कि उन्होंने क्यों झुठलाया, सुना था लेकिन उन्होंने अक्ल से काम नहीं लिया था। अगर हम सुनते गौर से, लौकुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलू, और हम उसको अक्ल की रोशनी में परखते तो आज हम जहन्नुम में जाने वाले नहीं होते। आपकी औलादों के सवालों के जवाब इस कुरान में मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब इस कुरान में मौजूद हैं, जुड़िए कुरान से। यहाँ पर तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन रह गए बस, अब आपने कहाँ जुड़ना है, रमज़ान के बाद जाके आप प्लान करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला ने एक कम्प्लीट इक्वेशन हमें दी है कुरान के ज़रिए। अगर माशरा डिवाइडेड है, माँ बाप एक तरफ वो कहते हैं बस अल्लाह ने कह दिया तो बात माननी है, दूसरी तरफ औलाद है वो कहती है हमें लॉजिकल प्रूफ दें फिर बात मानेंगे, इन दोनों को मर्ज करने की ज़रूरत है। माँ बाप लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आएँ, इल्म को बढ़ाएँ अपने दीन के, दुनिया के बारे में देखें क्या रिसर्चेस हो रही हैं, कहाँ साइंस जा रही है, किस माइंडसेट के ऊपर इंसानों के काम किया जा रहा है, इंसानों को क्या माइंडसेट सटल अंदाज में दिया जा रहा है। यू शुड हैव अ ग्रिप ऑन इट बीइंग अ एजुकेटेड मुस्लिम वुमेन, बीइंग अ एजुकेटेड मुस्लिम मदर, आपको अंदाज़ा होना चाहिए आपका बच्चा किस स्टाइल पर सोचता है और किन स्टाइल्स के ऊपर गुफ्तगू करता है और किन स्टाइल्स की डिस्कशंस को पसंद करता है। और औलादों के सवालों के जवाब के लिए प्लीज़ घसीट के लेके जाएं उनको, लेकर जाएं उनको क्लासेस में, बिठाएं उनको क्लासेस में ले जाके, चाहे महीने में एक दफ़ा सुने, चाहे हफ्ते में एक मरतबा सुने, चाहे 15 दिन में एक मरतबा सुने। अल्लाह ताला ने एक इक्वेशन दी है, सुनो समझो मानो, ये 3 स्टेप्स आपको ज़िंदगी में अप्लाई करने पड़ेंगे। जिसकी ज़िंदगी में ये स्टेप कहीं भी कोई एक कम होगा उसको इस्लाम की खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। जो सिर्फ अकल से सोचता रहेगा वो कभी मानेगा नहीं, जो सुनेगा और समझेगा नहीं वो मान तो जाएगा, वो सामने वाले को मनवा नहीं सकेगा। ये 3 स्टेप में से कोई स्टेप भी एक मुसलमान औरत के अंदर मिसिंग ना हो, और अल्लाह के कलाम के सामने आकर बैठिए, अल्लाह का कलाम आपको खुद सही सोचने का तरीका सिखा देगा, आपको बता देगा कि अल्लाह की बंदगी कैसे की जाती है और अल्लाह ताला का रास्ता जो है सिराते मुस्तकीम का वो कैसे अडॉप्ट किया जाता है। सही सुने, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुझे वहाँ लेके जाओ और वहाँ लेके जाइए जहाँ पर हक बताया जाता है और हक को मेरे सीने में उतार दे। अल्लाह से मदद मांगेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह हमें ज़रूर सिखाएगा। बाज़ लोग कहते हैं हम घर बैठ के खुद ही किताब पढ़ लेते हैं, कुरान की तफसीर घर बैठ के वो इम्पैक्ट कभी नहीं कर सकती जो सुनकर इम्पैक्ट करती है। ये सब जो मैं बोल रही हूँ मैं आपको लिखकर किताब में दे देती, आप घर बैठ कर पढ़ती, ये इम्पैक्ट आता कभी भी नहीं आता। कुरान का मिजाज, इट्स एन ऑडियो एक्सपीरियंस, कुरान का मिजाज जो है वो सुनकर इम्पैक्ट करता है। तो सुनिए ताकि कुरान समझ आए। अरबी ज़ुबान सीखिए, अगर आप में से कुछ लोगों को समझ आती है कि आप लोग सीख सकते हैं, अरबी ज़ुबान नहीं सीख सकते हैं तो कुरान की तफसीर की क्लास ज्वाइन करें। वैसे मैं आपको इतना बता दूं, बड़े बड़े स्कॉलर्स इस इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर गुजरे हैं जिनकी मदर टंग अरबिक नहीं थी, जो अरब्स नहीं थे लेकिन उनके नाम इतने बड़े हैं। इमाम बुखारी अरब तो नहीं थे, इमाम बुखारी अरब तो नहीं थे, अरब नहीं थे फिर भी उनका नाम कितने मुसलमान जानते हैं, ऑलमोस्ट हर मुसलमान। ऑलमोस्ट हर मुसलमान उनका नाम जानता है, इमाम मुस्लिम, वो भी अरब नहीं थे, इमाम नहीं थे, मुफस्सिर कुरान महमूद ज़मख़शरी, जिनका अक्सर मैं आपको हवाला देती रही हूँ इस पूरी सूरत यासीन की तफसीर में, इसलिए कि उनकी तफसीर जो है वो ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ है, महमूद अज़मख़शरी, ही वॉज़ नॉट एन अरब, मगर अरबी ज़ुबान पर इतनी कमांड उन्होंने हासिल की कि अरबी ज़ुबान ना सिर्फ सीखी, ना सिर्फ अरबी ज़ुबान बोलने लग गए, ना सिर्फ अरबी ज़ुबान में कॉन्वर्सेशन की, बल्कि पूरी तफसीर कुरान की अरबी ज़ुबान में लिख दी। मैंने आपको नाम बताया था हमीदुद्दीन फर्राही का, शायद मौलाना हमीदुद्दीन फर्राही, ये तो कोई बहुत पुराने क्लासिकल स्कॉलर भी नहीं है, इन्होंने, ये तो सब कॉन्टिनेंट के थे, इंडिया के रहने वाले थे, हमीदुद्दीन फर्राही इंडिया में थे, उर्दू बोलते थे, उसके बाद इन्होंने अरबी ज़ुबान सीखी, अरबी ज़ुबान ऐसी सीखी कि उसके बाद इन्होंने कुछ सूरतों की तफसीर अरबी ज़ुबान में की, उसके बाद इन्होंने हिब्रू लैंग्वेज सीखी और 8 साल लगाए हिब्रू लैंग्वेज सीखने में, और हिब्रू लैंग्वेज सीखने के बाद इन्होंने ज्यूइश ट्रेडिशंस को, ज्यूइश हिस्ट्री को पढ़ा, इसलिए कि वो सारा हिस्ट्री हिब्रू लैंग्वेज में थी, इब्रानी ज़ुबान में, और उसको पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी किताब दलील के तौर पर अरबी ज़ुबान में लिख कर मुसलमानों के लिए प्रेजेंट कर दी, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि बहुत से सेक्ट हैं ज्यूइश कम्युनिटी में जो ये समझते हैं कि असल में जो ज़बीह थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं थे, वो हज़रत इसहाक थे, इसलिए कि वो अपने आप को उस जगह पर लाना चाहते हैं। और पूरी हमीदुद्दीन फर्राही ने दलाइल के साथ, कुरान के दलाइल, अहादीस के दलाइल, और ख़ुद उनके अपने हिब्रू ट्रेडिशन के दलाइल को देकर इस बात को प्रूफ किया है अपनी किताब के अंदर कि असल में जो ज़बी थे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं थे। सो दिस इज़ एन इंसेंटिव, आप और मैं भी कुरान को सीख सकते हैं, आप और मैं भी कुरान समझ सकते हैं, और इतना तो सीख ही सकते हैं कि आप और मैं अपने अमल में उसको बेहतरी लाने के लिए कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने ये बात मेंशन की है कि आने वाले वक्तों में भी ऐसे लोग होंगे जो कि इल्म के मैदान और अमल के मैदान में बड़ी कुर्बानियाँ देंगे। सूरह जुमा में आता है ना, व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू, सहाबा से आपने कहा था जब कुरान की ये आयत आई थी कि अभी तुम्हारे बाद आने वालों में भी ऐसे होंगे जो कि तुम्हारी तरह की मेहनतें करेंगे, अभी वो तुमसे मिले नहीं हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें उन कलील लोगों में शामिल फरमा ले। कुरान का ताल्लुक याद रखें इस्लाम के साथ है, नस्ल के साथ अटैच नहीं है, ये अरब्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसी अमेरिकन की प्रॉपर्टी नहीं है, अल्लाह ने ये इंसानों की हिदायत का ज़रिया बनाया है, हर इंसान इससे फ़ायदा उठा सकता है, जस्ट यूज़ योर इंटेलेक्ट। क़द तबय्यना अर्रुश्द मिन अल-ग़य, ये वो किताब है जो हर तरह की डिविएशन से आपको निकाल कर आपको क्लियर कट नूर और लाइट के ऊपर ले आएगी। अल्लाह ने कॉन्सेप्ट बस यही दिया है कि इन चीज़ों को सुनो और समझो, कुरान की आयात को आप देखें, जो समझेगा, अक्ल को इस्तेमाल करेगा, वही अपने सामने की सद को हटा सकेगा, अपने हाल और मुस्तकबिल को, अपने सामने जो दुनिया में आयात मौजूद हैं उसके अंदर से निशानी तलाश कर सकेगा। कैसे उसको पता चलेगा कि मेरा बिस्तर भी मुझे आखरत की याद दिलाता है, कैसे उसको पता चलेगा कि मेरा फल भी मुझे आखरत की याद दिलाता है, मेरा कपड़ा मुझे आखरत की याद दिलाता है, मेरा स्पाउस मुझे आखरत की याद दिलाता है, मेरी औलाद मुझे आखरत की याद दिलाती है, मेरा हर रोज़ सुबह दोबारा उठ जाना और सांस लेना और पूरे होशो हवास के साथ उठकर खड़ा हो जाना मुझे आखरत की याद दिलाता है। एक वक्त होगा जिस वक्त मैं दुनिया में फिर दोबारा नहीं उठ सकूँगी, एक वक्त होगा जब मुझे कब्र से दोबारा उठा दिया जाएगा। मैं मर कदीना, किसने उठा दिया हमें हमारी आरामगाहों से। हर चीज़ आपके लिए आयत बन जाएगी अगर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगी, तो सामने की सद हटेगी, अगर आप अकल इस्तेमाल करेंगी तो माजी के तमाम इबरत आमेज़ वाक़यात से सीखेंगी, अगर आप अकल इस्तेमाल करेंगी तो आपको कुरान की आयत की बेहतरीन हिकमत और गहराई समझ आएगी। दिस ऑल हैज़ अ कनेक्शन विद योर अकल, विद योर इंटेलेक्ट, और अल्लाह ने आपको और मुझे आकिल बनाया है, और शैतान इन्हीं तीनों के ऊपर पहरे लगा देता है, माजी से नहीं सीखने देता, आयात को आपके और मेरे सामने मौजूद नेमतों को मामूली बनाकर दिखाता है। जब इंसान आजकल क्या है, हर इंसान को अपनी वो नेमत नज़र नहीं आती जो उसके पास है, वो नज़र आती है जो उसके पास नहीं है। ये कैसे है इंसान के साथ मामला, शैतान की बंदगी की वजह से, शैतान ने उसको अंधा कर दिया और उसको अपने सामने मौजूद अपनी नेमतें नज़र नहीं आती। तो शैतान से अगर लड़ना चाहते हैं, अगर शैतान की बंदगी छोड़ना चाहते हैं, अगर सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह की इबादत पर जुड़ना चाहते हैं, तो अपनी अक़ल को अपनी अल्लाह की दी हुई वही के ताबे कर लीजिए। आप इंशाल्लाह कभी भी अपनी टेम्पटेशंस अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स की बहाव में और उसके प्रेशर में नहीं आएंगे। आगे आयत नंबर 63 में आया, उसी मुजरिम को कहा जा रहा है, हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम तुअदून, ये वो जहन्नम है जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। हाज़िही आया है, हाज़िही आता है अरबी ज़ुबान में किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो करीब मौजूद हो, यानी जहन्नम को उसको करीब लाकर बता दिया जाएगा। मांगते थे ना बार बार अजाब, कहते थे अपने रसूल से ले आओ वो वादा अगर तुम सच्चे हो, लो अब वो वादा जहन्नम की शक्ल में तुम्हारे सामने करीब ही आ गया है। जहन्नम के लफ्ज़ के लिए अमंग द मुफस्सरीन दो राय हैं। एक राय यह है कि जहन्नम अरबी में एंशियंट पर्शियन लैंग्वेज से आया है, फ़ारसी ज़ुबान से आया है, पुरानी फ़ारसी ज़ुबान जो है उसमें, वो कहते हैं कि फ़ारसी में जहनाम से आया है, जीम हा नून अलिफ मीम, जहनाम। जहनाम फ़ारसी ज़ुबान में कहते थे किसी कोई ऐसा टॉर्चर चैम्बर जहाँ पर कैदी को बंद करके उसको टॉर्चर दिया जाए, तो जहनाम से स्कॉलर्स कहते हैं अरबी ज़ुबान में यह जहन्नम बनकर आया है। एक राय दूसरी ये है कि ये हिब्रू लैंग्वेज से आया है, इब्रानी ज़ुबान से आया है, और इब्रानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है गहनम, गाफ हा नून मीम, ये गाफ का लेटर अरबी ज़ुबान में नहीं होता, तो गहनम से वो कहते हैं आया है और गहनम से जहन्नम बना है। और गहनम इब्रानी ज़ुबान में कहते हैं ऐसी वादी जिसमें आप कूड़ा करकट फेंकते हैं। अगर आप ये दोनों माने कुरान की बताई हुई जहन्नम पर अप्लाई करें तो क्या अप्लाई होते हैं? जहन्नम वो चैम्बर जहाँ पर जहन्नमियों को टॉर्चर किया जाएगा, और जहन्नम वो जगह जहाँ पर दुनिया का कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया जाएगा। बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशंस, बड़े बड़े अपने आप को कुछ तकब्बुर के साथ ज़िंदगी गुजारने में पोजीशन होल्डर रखने वाले लोग, बड़े अपने आप को स्टेटस कॉन्शियस डिक्लेयर करने वाले लोग, बड़े क्लब्स में जाने वाले लोग, बड़े अपने आप को क्लियरली अपने क्लब्स के बोर्ड्स पर लगाने वाले लोग के डोमेस्टिक स्टाफ अंदर नहीं आ सकता, ये तकब्बुर की अलामत दुनिया की हद तक रह जाएंगी, आखिरत में कूड़ा करकट बनाकर इकट्ठा कर दिया जाएगा। जहन्नुम जिससे आपको कई मरतबा दिन में पनाह मांगनी चाहिए, जहन्नुम जिससे उन सहाबा ने भी खौफ किया है जिनको उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दे दी थी। हज़रत उमर रोया करते थे, आप अगर सीरत उमर पढ़ें रदी अल्लाहु अन, तो बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत उमर जहन्नुम का सोच सोच के और आखरत का सोच सोच के इतना रोते थे कि आखिरी वक्त में आपके चेहरे के ऊपर दो लकीरें पड़ गई थी गालों पर आपके, इतना रोते थे, कॉन्स्टेंट रोते थे। हज़रत अबू बकर जहन्नुम और हिसाब किताब के खौफ से इतना रोया करते थे कि कहते थे कि काश के मैं चिड़िया होता, ये ज़मीन पर उगने वाली घास होता, कोई शाख से टूटी हुई ट्विग होता ताकि मुझे हिसाब किताब ना देना पड़ता। तो याद रखें जहन्नुम से कॉन्स्टेंट पनाह मांगा करें, कॉन्स्टेंटली। ये जो तमाम सहाबा हैं ये आपको नज़र आते हैं बैनल खौफ़ी वर रजा, हालाँकि हज़रत अबू बकर को डरने की क्या ज़रूरत थी जहन्नुम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नहीं कई मरतबा उनको जन्नत की बशारत दे चुके थे। हज़रत उमर को क्या ज़रूरत थी जहन्नुम से डरने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मुकामात के ऊपर उनको जन्नत की बशारत दे चुके थे, लेकिन उनका एटीट्यूड था बैनल खौफ़ी वर रजा। हम कहते हैं हाँ हाँ हम बैनल खौफ़ी वर रजा हैं, मगर अगर मैं सिंपल अपने आप में अपना बता सकती हूँ आपको, आप सब अपना अपना जानते हैं, कभी कभी जब आप अपने अपने जुमलों को खुद ही डाइसेक्ट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है, हम कहते हैं कि हाँ मैं बैनल खौफी वर रजा हूँ, बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम 99% हम बैनल रजा वर रजा होते हैं, उम्मीद और उम्मीद के दरमियान में ही होते हैं, खौफ कहाँ होता है। हाँ कोई दर्द सुनते हैं तो थोड़ा खौफ आ जाता है, उसके बाद जैसे ही पहला कदम घर में जाता है और एक आवाज़ आती है अम्मा, सारा खौफ आपका फिजल आउट कर जाता है। सो कॉन्स्टेंट कुरान के सामने आकर बैठिए। क्यों सहाबा को बार बार जहन्नुम से पनाह मांगने का और जहन्नुम से रोने का और जहन्नुम से डरने का ख्याल आता रहता था? इसलिए कि रिमाइंडर कॉन्स्टेंट सुनते रहते थे, साल में एक दफ़ा रिमाइंडर नहीं सुनते थे। कुरान में आता है अफा मिन हाज़ल हदीस तअज्जुबून, ये कोई ऐसी हदीस, ये ऐसी बात है कि जिसके ऊपर ये तअज्जुब करेंगे, वतदहकून वला तबकून, और इस कुरान को सुनने के बाद भी हंसते रहेंगे और रोएंगे नहीं? जहन्नुम का जिक्र पढ़ लेने के बाद, जहन्नुम का विविड डिस्क्रिप्शन सुन लेने के बाद, कुरान की आयात के खुल जाने के बाद और इससे पहले का मेरा लाइफस्टाइल एक नहीं हो सकता, मेरा थिंकिंग पैटर्न एक नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कह दिया जिसके दिल में खौफ आता है वो दिल अल्लाह के खौफ से, जहन्नुम के खौफ से रोता ज़रूर है। तो ये अल्लाह ताला ने जो बार बार जहन्नुम का ज़िक्र किया है, ये तो यहाँ मुकाम है सूरत यासीन में जहाँ मुजरिमों से रोज़े महशर कहा जा रहा है। सहाबा को और कुरैश को और हम सबको यहीं डराया जा रहा है। ये जितनी डिटेल आपको जहन्नुम की मिलती है कुरान में और अहदीस में, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। दिस इज़ आउट ऑफ रहमा कि अल्लाह ताला ने जहन्नुम का इतना विविड डिस्क्रिप्शन बता दिया है, इसलिए कि जिसके दिल में खौफ आना होगा उसके दिल में खौफ आ जाएगा। जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहेगा वो अपनी ज़िंदगी को बदल लेगा। और याद रखें, एट द एंड ऑफ द डे ये अल्फाज हैं, अल्फाज रियलिटी से बहुत पीछे होता है। जब अल्फाज में पढ़कर हैबत आती है तो रियलिटी में जहन्नुम कैसी होगी? आपने पढ़ा है ना, जहन्नुम के लिए आता है कि जहन्नुम को जब लाया जाएगा तो जहन्नुम की 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्तों ने थामा होगा। एक वाइल्ड बीस्ट, हमारे जहन में कोई इतना बड़ा वाइल्ड बीस्ट आ नहीं सकता जिसकी 70,000 लगामें हों, हम समझ नहीं सकते इसको। जहन्नुम का साइज़ का अंदाज़ा आप कर सकते हैं इससे। इसीलिए जब आप वो हदीस सुनते हैं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमियों को जहन्नम में डालने से पहले ह्यूज माइटी साइज़ का कर दिया जाएगा, एक हदीस में आता है एक जहन्नमी का एक दांत, दांत टूथ ओहद पहाड़ के बराबर होगा। उस जहन्नमी के स्किन का फासला, यानी जो आपकी एपिडर्मिस होगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, जहन्नमी की जो स्किन होगी उसकी स्किन की डेप्थ इतनी होगी, मोटाई इतनी होगी कि उसका फासला 3 दिन के बराबर होगा। अल्लाह ये इतनी मोटी मोटी खालें क्यों कर देगा? ताकि जलने के अजाब की इंटेंसिटी बढ़ जाए, फौरन जल के ख़त्म नहीं हो जाएंगे। और उसमें भी अल्लाह ने कहा है कुल्लमा नदिजत जुलूद हम बदलना हम जुलूदा, जब एक खाल जल जाएगी हम दूसरी खाल दे देंगे। जहन्नुम का डिस्क्रिप्शन पिच डार्क, अंधेरा। और जहन्नुम के लिए अहादीस में मफहूम आता है कि जहन्नमी गर्मी, पसीने और जली हुई स्किन की वजह से एक दूसरे पर चिपक रहे होंगे और उसमें जगह नहीं होगी और उसमें ठूंस दिए जाएंगे। आप सोचें गर्मी हो, अभी भी हम एसी वाले कमरे से बाहर निकलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है गर्मी का। इंसान को ऐसे एसी वाले कमरे से बाहर निकल कर लगता है जैसे आप अवन के अंदर आ गए, और लिटरली ऐसा ही लग रहा है। आदत नहीं है ना ऐसी गर्मी की, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने थर्मोस्टेट तेज़ किया हुआ है कराची का। अल्लाह अल्लाह सॉरी, हाँ बिल्कुल। अब आप देखें ये गर्मी और उस गर्मी में स्किन जली हुई, और जली हुई स्किन के ऊपर ज़रा कपड़ा भी टच करता है ना तो लगता है चिपक जाएगा, और लिटरली चिपक जाता है। आप सोचें जहन्नम में एक दूसरे से चिपके होंगे और पिच डार्क होगा। जहन्नम की आग को इतने हज़ारों साल दहकाया गया है कि रोशन नहीं है, पिच डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है। और जहन्नम की सज़ा ये कि जहन्नमी जहन्नम से कभी निकल नहीं सकेंगे। दुनिया में कोई तकलीफ़ आती है, कोई सर्जरी होती है, कोई स्टिच लगता है, कोई जल जाता है, तो इंसान इस उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखता है कि चलो एक हफ़्ता, एक महीना, दो महीने में ठीक हो जाऊँगा। जहन्नमी खालिदीन फीहा अबदन, हमेशा उसमें रहेंगे, इन्फिनिटी। हाँ, कलमा गो मुसलमान अपने वक्त की सज़ा पूरी करने के बाद उसमें से अपनी जली हुई खालों के साथ निकाल लिए जाएंगे। जली हुई खाल कैसी होती है? उन्हीं जली हुई खालों के साथ जन्नत में एंटर किया जाएगा, बाद में उनका फेशियल ट्रीटमेंट किया जाएगा। कहना आसान है हाँ हाँ अपने हिस्से की सज़ा काट लेंगे, बाद में तो जन्नत में ही जाना, मजाक बना लिया हमने जन्नत को। जन्नत का एक सज़ा भी सह ले इंसान तो इंसान साबुत सलामत नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने मौका दिया है इसी दुनिया में इन आयात से सीखने का। आगे आयत नंबर 64 में फरमाया इस्लौहल यौमा बिमा कुंतुम तकफुरून। आप सख्ती देखें टोन की, लहजे की, अल्फाज की। अब गिरो इसमें, अब जलो इसमें, इस्लौहा जलो इसमें। जैसे आपने कहती गो अवे, मेरी नज़रों के सामने से हट जाओ। इस्लौहा जलो इसमें, अल यौमा आज के दिन। क्यों? बीमा कुन तुम तक फुरून, वही काना की फैमिली से कुन तुम तक फुरून आ गया, इसलिए कि तुम कॉन्स्टेंटली इनकार करते रहते थे, इसलिए कि तुम कॉन्स्टेंटली नाशुक्र थे। अल्लाह का कलाम सुनते थे और तकदीब करते थे, अल्लाह का कलाम सुनते थे और उसको अपनी अक़ल से सोच के अपने अमल का हिस्सा नहीं बनाते थे। उस इनकार की वजह से आज तुम इसमें गिरोगे और तुम जलोगे। कुफ्र के दोनों मानी आते हैं, एक है अल्लाह का इनकार, एक है अल्लाह की नेमतों की और अल्लाह की नाशुक्री। मुसलमान होते हुए अपने आप को इस्लाम के लिए शुक्रगुजार ना बनाना, ये इंसान को इस कैटेगरी में लेकर आ जाएगा। वो मुसलमान जिनके रिलीजन के खाने में इस्लाम था और उन्होंने अपने आप को मुसलमान घरानों में देखा, लेकिन उन्होंने इस्लाम को अपने लिए पसंद नहीं किया, इस्लाम से मुख्तलिफ रास्ता गुजारा, उन सबको कहा जाएगा इस लाउहल याउम बीमा कुन तुम तक फुरु। अब देखें, जब आप ये आयतें पढ़ते हैं आपके दिल में रहम तरस अपने लिए तो आता ही आता है, आसपास के लोगों के लिए नहीं आता। इस वक्त मेजॉरिटी इंसान भटक रहे हैं। आप ही में से लोग होंगे जो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, आपको इस पैगाम को आगे पहुंचाना है अपनी अपनी कैपेसिटी में। कोई जरूरी थोड़ी है कि एक दर्स का माहौल बनाकर बात की जाए, ड्राइंग रूम में भी तो बात हो सकती है, लाउंज में भी तो बात हो सकती है, गार्डन में बैठ के भी तो बात हो सकती है। ये हमारा जितना भी मीडिया का पूरा स्लॉट है, यंग औरतें हैं, यंग मर्द हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, आप कभी इनकी तस्वीरें देखें, आपको दुख होता है या गुस्सा आता है? दुख होता है, मुझे नहीं गुस्सा आता, दुख होता है। और समझ नहीं आती कि इनके कान तक बहुत बात कैसे पहुंचा दी जाए। ये सब मुसलमान हैं, अपने ऊपर तो आता ही इंसान को सबसे ज़्यादा खौफ। याद रखें, जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आप पुरखलूस होंगे, आप दीन को थामने के लिए भरपूर अपनी जान लगा देंगी, अल्लाह आपको मौका ज़रूर देगा अपने लिए सदका जारिया इकट्ठा करने का। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इन तमाम भटके हुए लोगों की तरफ मुझे हिदायत पहुंचाने का ज़रिया बना दे। और अल्लाह जानता है कि किसकी ज़ुबान से किसका दिल खुल जाएगा। अल्लाह, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई मुसलमान बहन या भाई जहन्नुम की जेल में जाके बंद हो जाए। जहन्नुम से खुद जहन्नुम के कई हिस्से पनाह मांगते हैं। दुनिया में जिन्होंने इनकार किया, दुनिया में इनकार करने वालों का हाल याद है ना, वर्चुअल, जिनके ऊपर रुकावटें और बैरियर आ जाते हैं। जो वर्चुअल बैरियर्स क्या थे कि उनके सामने सद है, उनके पीछे सद है, और कुरान की आयतें सुनते हैं और उन पर अमल नहीं करते, असर नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये वो लोग जिन्होंने सुनने के बाद भी इनकार किया, जो आसपास आवाज़ें सुनते थे। रमज़ान में सब मुसलमान हो जाते हैं, वही लोग जो बाकी 11 महीने पूरी कौम को नचा रहे होते हैं, रमज़ान के महीने में मुसलमान हो जाते हैं। इसका मतलब उनमें टेंडेंसी है बाकी 11 महीने मुसलमान होने की भी। लानत तानत नहीं करें उनके ऊपर, दुआ करें। अगर आमना सामना आपका किसी से हो जाए, अगर आपको किसी की बात सुनने को मिल जाए, आप दिल से दुआ करें अल्लाह इस शख्स को हिदायत दे दे, अल्लाह इसको इस्लाम का सपोर्टर बना दे। आयत नंबर 65 में फरमाया, अल्लाह ताला क्या कहेंगे ऐसे मुजरमीन से, अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसिबून। आज हम इनके मुंह पर सील लगा देंगे। सील लगा देंगे यानी आप समझें आपके होंठ कोई स्टिच कर दे। सोचा, आपके होंठ स्टिच कर दे। तस्वीरें देखते हैं हम बड़े आराम से गूगल की, शटर स्टॉक की, मुंह पे जिप लगी हुई है, देखिए है ना, इट्स नॉट ईजी। आप सोचें मुंह स्टिच हो गया, अब तो मेकअप का ज़माना है, और मेकअप का भी ऐसा ज़माना है कि आप मेकअप करके जो हैं वो पता नहीं क्या से क्या बन जाएं, आप हर कुछ बन सकते हैं। मेकअप ऐसा भी होता है कि मैं आपकी शक्ल की बन सकती हूँ, आप मेरी शक्ल की बन सकती हैं, मालूम है ना आपको ये बात। हाँ, अब मेकअप करके हेलोवीन के अंदर जब हेलोवीन आता है पूरी दुनिया में, बहुत से बेचारे मुसलमान भी, आई फील सो सॉरी अबाउट देम, वो अपने मुँह पर स्टिच करके वो बना लेते हैं ना पूरा मेकअप से। जब मेरे सामने कोई तस्वीर ऐसी आती है किसी औरत की, किसी बच्चे की, जिसने हेलोवीन के मेकअप में अपने मुंह पे स्टिचेस लगाए हुए क्रॉस करके, मुझे ये आयत याद आती है, अपने हाथों से अपने मुंह के ऊपर नख्त मुंह वाला जो है वो कॉन्सेप्ट खुद ही पेस्ट कर लिया। अल्लाह उस दिन मुंहों को सील कर देगा, स्टिच कर देगा। ये नख्तम ख़तमा कहते हैं वैक्स सील को, और वैक्स सील जो आती थी वो जिस जगह लगाई जाती थी वहाँ से फिर उसको तोड़ के निकालना पड़ता था, दोबारा नहीं खुलती थी वो वैक्स सील जो पहले आती थी, बहुत मज़बूत होती थी। अल्लाह ने कहा कि हम इनके मुंहों को सील कर देंगे, इनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और पांव गवाही देंगे। बड़ी इसमें हिकमतें हैं इस आयत में। मुंह सील हो गया, सब ये नहीं कहा कि इनके मुंह को, इनके हाथों को, इनके पाँव को सील कर देंगे. नहीं, ये भी नहीं कहा कि हम इनके मुंह और इनके हाथ और इनके पाँव जो हैं ये हमसे कलाम करेंगे. हर एक ऑप्शन के लिए हर एक नई टर्म है. मुंह को सील करेंगे, हाथ कलाम करेंगे और पाँव गवाही देंगे. तीन अलग अलग सिनेरियो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया, इसलिए कि अल्लाह ने तीन अलग अलग फैकल्टीज दी थी. अल्लाह ने बोलने के लिए मुंह दिया था, अल्लाह ने काम करने के लिए हाथ दिए थे, और अल्लाह ने चल कर ताकत के इस्तेमाल के लिए पाँव दिए थे. याद है मोमिन रजुल, कितने रिसोर्सेज थे उसके पास जिसके साथ उसने अपने रसूलों की सपोर्ट की थी. ही जस्ट हैड हिज लेग्स, कुछ भी नहीं था, ज़ीरो रिसोर्सेज. यस आया था ना लफ्ज़, यस दौड़ता हुआ आया था. यही पाँव अल्लाह ने दिए थे दीन के रास्ते में भगाने के लिए, ये पाँव अल्लाह ने दिए थे सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए, ये पाँव अल्लाह ने दिए थे अपनी फर्माबरदारी की जगहों पर जाने के लिए. अल्लाह के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, ये यहाँ पर जो आया है बीमा कानू यकसिबून, बीमा यहाँ पर इल्लत के लिए है इब्ने आशूर के मुताबिक, यानी ये सबब बयान कर रहा है क्यों अल्लाह मुँह सील करेगा, क्यों इनके हाथ कलाम करेंगे, क्यों इनके पाँव इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे. इसलिए कि अल्लाह ताला जो है सबब बता रहा है उनके कांस्टेंट कमाई की वजह से, उनके आमाल की वजह से. तो ये बी ने आपको सबब बता दिया. अल्लाह ताला ने इंसानों को जहन्नुम में जाने के लिए नहीं बनाया था. अल्लाह को शौक नहीं है कि जहन्नुम में इंसानों को गिराए. अल्लाह को शौक नहीं है कि इंसानों को मुजरिम कहे. अल्लाह को शौक नहीं है कि इंसानों से कहे इसलौहा, गिर जाओ इसमें, भुनो इसमें, बारबेक्यू हो जाओ इसमें. अल्लाह को नहीं शौक है. अल्लाह ने इंसान बनाया जन्नत के लिए. हमारे वालिदैन कहाँ थे सबसे पहले? हमारे वालिदैन, एक तो आपके दुनिया के वालिदैन हैं और एक आपके स्पिरिचुअल वालिदैन हैं. कौन है? हज़रत आदम और बीबी हव्वा. अल्लाह ताला ने उनको जन्नत के लिए बनाया था. उनको रखा गया था जन्नतुल इब्तला में, और जब उनकी औलाद दुनिया में कामयाबी से नेकियां करते हुए अल्लाह की रहमत के ज़रिए जन्नत में जाएगी तो वो जन्नत होगी जन्नतुल खुल्द. हमारे माँ बाप को रखा गया था जन्नतुल इब्तला, आजमाइश के लिए रखा था ना, ताकि अल्लाह ताला ने फिर आगे दुनिया का मामला प्रोसीड करना था. जो दुनिया से गुजरने के बाद जन्नत में पहुँचेगा वो जन्नतुल खुल्द में पहुँचेगा, हमेशगी की जन्नत में पहुँचेगा. तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने असल में इंसानों को जहन्नुम के लिए पैदा नहीं किया. इंसान जहन्नुम में क्यों जाते हैं? बीमा कानू यकसिबून, वो जो कांस्टेंट कमाते रहते हैं, वो जो कांस्टेंट अपने काम जो है वो अल्लाह की नाफरमानी वाले करते रहते हैं, वही आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है. यकफुरून पीछे आया था, यहाँ पर आ रहा है यकसिबून, उससे पीछे आया था अफलम तकूनू ताअकिलून. सो ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट आपको इस्तेमरार का यहाँ पर जो मफहूम है वो मिल रहा है. इमाम तबरी के मुताबिक जो ये गुनाहगार लोग होंगे इनके हाथ अल्लाह से कलाम करेंगे. सब इनको इस पर भी एक और टॉर्चर दिया जा रहा है कि ये वो लोग जो कि अक्सरियत में मिल के गुनाह किया करते थे, मेहनत करके गुनाह किया करते थे. सिर्फ नेकी मेहनत करके नहीं होते, गुनाह भी बहुत मेहनत करके होते हैं ना. मूवी रिलीज़ होती है जिसको आप एक डेढ़ घंटे में या तीन घंटे में देख के फारिग होते हैं, कितने सालों में और कितने महीनों में बनती है, अमल करने वाले और थकने वाले. इमाम अत्तबरी कहते हैं कि कुफ्फार के हाथ इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे. ये इसी पर इतना मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे कि इनके साथी तो दूर की बात, इनके सपोर्टर्स तो दूर की बात, जिनके साथ ये हैंग आउट करते थे इनके दोस्त तो दूर की बात, जिनके साथ इनका उठना बैठना था दिन रात गुजरते थे दूर की बात, वो क्या इनको सपोर्ट करेंगे? इनके तो अपने हाथ इनके ख़िलाफ़ गवाही देने लग जाएंगे. इनके अपने हाथ अल्लाह के स्पाइस थे, इनको मालूम ही नहीं था. इसलिए कि क़यामत के दिन ये हाथ अल्लाह से कहेंगे, कैसे बोलेंगे, ये हाथ बोलेंगे कि अल्लाह ताला मैं इन हाथों से, मैं अपने से गुनाह नहीं करना चाहता था, अहादीस बताती हैं, इस शख्स ने गुनाह करवाया मुझसे. इसलिए कि हाथ भी तो अल्लाह की मखलूक ही है ना. वो डरेंगे कि इस जहन्नुम को करीब देख के, जिस जहन्नुम को करीब लाया गया है, हाथ ही जहन्नुम, जब वो जहन्नुम को देखेंगे तो अहादीस बताती हैं कि खौफ से हाथ बोलना शुरू कर देंगे कि हमें इसमें फेंक दिया जाएगा जलने के लिए. तो वो इसी इंसान के ख़िलाफ़ विटनेस बन जाएंगे. हदीस में आता है, जो हदीस इमाम अहमद में आती है, सही हदीस है जिसका मफहूम है, आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, एक कंपैरिजन मिलता है कि किस तरह से नेक लोगों के गुनाहों को छुपाया जाएगा और गुनाहगार लोगों के गुनाहों को एक्सपोज कर दिया जाएगा. दुनिया में गुनाहों की एग्जिबिशन करते थे, कैटवॉक्स करते थे, मैगजीन्स पर आते थे, क्लब्स में जाते थे, शादियों के अंदर अपने जवान बेटे और बेटियों को नचवाते थे। बहुत शौक़ था गुनाहों के एग्जिबिशन का, तो क़यामत के दिन भी तुम्हारे गुनाह एग्जिबिट किए जाएंगे। और वो मोमिनीन सादिकीन जो टूटी फूटी कोशिश करके नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश करते थे, फिर गिरते थे, फिर खड़े होते थे, फिर गिरते थे, फिर खड़े होते थे, फिर स्लिप करते थे, फिर तौबा करते थे, अल्लाह क़यामत के दिन उनके गुनाहों को ढांप लेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। हदीस का मफहूम आता है, मोमिनीन को अल्लाह उनकी कुर्बानियों की वजह से बख्श देगा, इसलिए कि वह सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश तो करते थे, और उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। मग़फ़रत आता है ना, गफ़रा आता है किसी चीज़ को कवर कर लेना, ढांप लेना, अल्लाह उनके गुनाहों को ढांप लेगा। और कैसे ढांपेगा? अल्लाह छुपा लेगा। यानी गफ़रा के अंदर मफहूम आता है, मिसाल के तौर पर मैं इस लैपटॉप के ऊपर अपना दुपट्टा डाल दूँ, तो आपको ये तो पता चलेगा बाहर से आने वाले को कि इसके नीचे कोई चीज़ है, मगर क्या चीज़ है ये नहीं पता चलेगा। तो गफ़रा के अंदर मफहूम आता है गुनाहों को कंसील कर लेना इस तरह से कि पता ही ना चले कि इस छुपी हुई चीज़ के नीचे क्या है। इसके मुकाबले में कफ़रुस सईआत जब आता है, बुराइयों को दबा देना, इसका मतलब होता है अल्लाह ताला बिल्कुल बुराइयों को, गुनाहों को दफन कर देगा, गायब कर देगा, पता ही नहीं चलेंगी। तो हदीस में आता है कि अल्लाह नेक लोगों के गुनाहों को ढांप लेगा और कोई मखलूक इनके बारे में ना जान सकेगी। हाँ, उनकी जो नेकियां होंगी वो नेक बंदा चाहेगा कि सब उसकी नेकियां देखें। कुरान में आता है ना कि वो अपना अमाल नामा अपने हाथ में लेकर खुश होता वह अपने घर वालों की तरफ दौड़ेगा। जिसने दुनिया में अपनी नेकियों को एग्ज़िबिशन से बचाया, जिसने अल्लाह की खातिर नेकी की, जिसने अपने आप को अपनी टेम्पटेशंस को रोक के रखा सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए, अब उसके पास असल वक्त है। करो एग्ज़िबिशन, बहुत शौक था दिखाने का, वो वक्त है दिखाने का। दुनिया में इंसान अपने गुनाहों को छुपाए, अपने गुनाहों को फेसबुक पर ब्रॉडकास्ट ना करे, व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट ना करे, जाकर सबके सामने ब्रॉडकास्ट ना करे। जो गुनाह आपका मैं और आप, मैं या दूसरे लोग नहीं जानते, क्यों फेसबुक पर डाल डाल के हम सबको बताते हैं? आपके अपने हाथ आपके ख़िलाफ़ तो गवाही देंगे ही देंगे, हो सकता है हम इंसान भी आपके ख़िलाफ़ गवाही दें। अगर कोई गलती आपसे हो रही है उसको फेसबुक पर मत डालिए। आप अपनी गलती को मल्टीप्लाई कर रही हैं, इसलिए कि जो उसको देखेगा, आपने अपनी हंसती मुस्कुराती खूबसूरत तस्वीर फेसबुक पर डाल दी ईद के दिन, जब मेकअप नहीं लगा मुंह पे तब तो नहीं लेकर डालेंगे, ईद के दिन की तस्वीर लेकर डाल दी और मुस्कुरा भी रही हैं, और 10 और औरतों का भी दिल किया आपकी तस्वीर देख के मैं भी डालती हूँ, क्या आसार छोड़े आपने पीछे? बहुत बुरे आसार छोड़े। औरतों को तो अपनी जीनत छुपाने को कहा गया है, आपको जीनत को मना थोड़ी किया है? औरतों के सामने जीनत कीजिए, शौहर के सामने जीनत कीजिए, उसके सामने तो बेचारे जो है मुँह झाड़ सर फाड़ चले जाते हैं। अभी मैं बाहर नहीं जा रही ना, इसलिए मैंने कोई मुँह मेकअप नहीं लगाना। अपने लिए आसार गलत मत इकट्ठे करें, ये सारे लोग क़यामत के दिन गवाही देंगे। वो औरत जिसने पहली तस्वीर डाली होगी और उसको देखकर बीसियों ने और ने डाली होगी, क़यामत के दिन वो कहेगी अल्लाह पहले इसको सजा दे, इसकी देख के मैंने डाली थी। पहली आने वाले, कुरान में आता है ना, जब जहन्नुम में एक के बाद दूसरी ग्रोह को कौम को डाला जाएगा, हर पिछली कौम अगली को और अगली कौम पिछली को कर्ज करेगी, कहेगी अल्लाह इनको सजा दे, मैंने इनके कहने पर यह काम किया था। मत अपने पीछे गुनाहों के अंबार छोड़ कर जाएँ। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मगफ़रत और माफ़ी मांगें कि अल्लाह हमें पीछे अपने नेकियां छोड़ कर जाने वाला बनाए। इसी हदीस के मफहूम में आता है कि नेक लोग अपनी नेकियां एग्जिबिट करना चाहेंगे, और काफिर और मुनाफिकीन को जब कहा जाएगा कि अपने अमाल को प्रेजेंट करो और उनके अमाल फरिश्ते प्रेजेंट करेंगे, तो काफिर और मुनाफिकीन अल्लाह के सामने खड़े होकर डिनाई करेंगे, कहेंगे हमने ये काम नहीं किए, और आर्ग्यूमेंट होगा, फरिश्ता कहेगा हमने लिखा इसलिए कि हमने इसको करते हुए देखा, और मुनाफिकीन कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट करेंगे। इस मौके के ऊपर अल्लाह ताला उनके मुंहों को सील कर देगा, अल्लाह उनके मुंह स्टिच कर देगा, और फिर वो नहीं बोल सकेंगे, और फिर अल्लाह उनके हाथों को कुव्वत गोयाई देगा, और उनके हाथ गवाही देंगे कि अल्लाह इससे मैंने थप्पड़ मारा था मिसाल के तौर पर, इससे मैंने कत्ल किया था, ट्रिगर दबाया था मिसाल के तौर पर, इससे मैंने चोरी की थी, इससे मैंने कोई गलत टेक्स्ट मैसेज टाइप किया था, इससे मैंने कोई अपनी पिक्चर आगे जो थी वो पोस्ट की थी या शेयर की थी जो कि नामुनासिब थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इस्लाम मुझे मना करता है, फिर हाथ गवाही देंगे और फिर इंसान बोलेगा, कुरान में आता है लिमा शाहिद तुम अलैना, अरे तुमने हमारे खिलाफ गवाही दे दी। ये सोचेगा, वो बोलेगा नहीं, जुबान तो बंद है उसकी। और उसके बाद इंसान जब अपने हाथों को बोलता हुआ देखेगा तो शॉक्ड रह जाएगा और फिर हाथ बोलेंगे। कुरान में आता है अनतकन अल्लाहु अल्लज़ी अनतका कुल्ल शय, हम बिल्कुल ऐसे ही कुव्वत गोयाई हासिल कर रहे हैं जैसे अल्लाह ने हर चीज़ को बोलने की ताकत दी है। और फिर इस तरह से अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत सख्त हसरत का नमूना बना कर रख देंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए इस कुरान के इल्म को अमल में एब्जॉर्ब करना आसान बना दे। अल्लाह हम टूटे फूटे लोग हैं और हमसे नेकियां भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अल्लाह हमारी नेकियां भी इस काबिल नहीं हैं कि हम आपसे आपकी रहमत का तकाजा कर सकें। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह तमाम मरहूमीन को बख्श दे, अल्लाह हमारी औलादों को थाम ले, अल्लाह हमारी औलादें जहाँ भी हैं दुनिया में उन सब की हिफाजत फरमा, अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह उनको हमारे लिए सदका जारिया बना, अल्लाह हमारी औलादों की औलादों को, उनकी औलादों को, हमारी ज़ुर्रियत को हमारे लिए सदका जारिया बना। अल्लाह तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ मुसलमान उम्मत पर तकालीफ़ हैं उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह हमसे हमारी नेकियों का और अल्लाह हमसे हमारी नेमतों का आसान हिसाब ले। अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह इस शहर पर, इस मुल्क पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह हम गुनाहगारों को बख्श दे, हम पर बारिश अपनी रहमत की और हम पर अपनी जिसको बेनिफिशियल रेन कहते हैं सैयबन नाफ़ियन, अल्लाह हमें बेनिफिशियल रेन अता फरमा। अल्लाह हमें रहमत की बारिश अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क को कहत से और इस मुल्क को गुनाहों से बचा ले। अल्लाह हमारी पकड़ हमारे गुनाहों के ऊपर ना करना। अल्लाह आपने माफ़ ना किया तो हम कहाँ जाएंगे। अल्लाह हमें बख्श दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप लोगों को यहाँ पर अभी बाहर मेट जो हैं वो दो देंगी चीज़ें, एक आपको हम इंशाल्लाह फ्लायर दे रहे हैं 20 रमज़ान से लेकर 26 रमज़ान तक सदाबहार लॉन के पास 6 दिन का एक छोटा सा ऐसा ही कोर्स है जैसे यहाँ आपको सूरह यासीन का करवाया है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है जिसमें 7 कैटेगरीज़ अल्लाह के अर्श के साए में होंगी। तो इंशाल्लाह वो कोर्स मैं वहाँ करवाऊँगी, फौजिया नासिर का घर है। आपको फ्लायर अभी दे दिया जाएगा शेडेड बाय अल अर्श के नाम से। अगर आप नहीं जा सकते प्लीज़ किसी रिलेटिव को फॉरवर्ड कर दीजिए। दूसरा, आप में से किसी ने सुबह उठने के बाद की दुआ जो है वो आप लोगों के लिए गिफ्ट की है, वो आपके लिए तोहफ़ा है, प्लीज़ ले लीजिए और अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।